तीसरा स्कंद सातवां अध्याय 15वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। विदुर्वाचा समछिन्ना संशय मह्यम तब सुप्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। सो विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महापुरुष से परामर्श करना पड़ता है। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य यह है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी सेव्य तथा सेवक का संबंध है। भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास है। इस संबंध का असली ज्ञान इस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है और इस पुनरुज्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। इस तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य असली ज्ञान को प्राप्त होता है और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रगति के पद पर स्थिर किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखां वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी पौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। सो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद चल रहे हैं, तो इसे चर्चा करने से पहले आज हमारे साथ में प्रवीण प्रभु बैठे हैं हमारे पास। प्रभु कृपा प्रभु, हाँ प्रभुपाद कृपा प्रभु, प्रभु प्रभु कृपा प्रभु। सो हम दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं हम लोग। सो बहुत अच्छे से डिवोशन कर रहे हैं ये, तो इनका स्वागत है इनका। सो यहाँ पर विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी। ऐसे प्रश्न हैं जो हम सबके दिमाग में हैं, अचेतन में कहीं ना कहीं, हमें पूरी तरह से उनके उत्तर नहीं पता, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, हमारे सामने वो प्रश्न आ नहीं पाते। तो विदुर जी ने बहुत दयालु होकर हमारे प्रश्न जो है वो मैत्रेय ऋषि से पूछे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, कौरव और पांडवों के सारी सेनाओं का, सारे क्षत्रिय मर गए, लेकिन विदुर जी जो है वो क्या उसके बारे में चिंतित है? वो उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर, कौन जिंदा रहा कौन मर गया। पूरा ध्यान उनका इस बात में है कि एक वैष्णव से मिला हूँ, एक भक्त से मिला हूँ, तो वो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। नहीं सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विदुर जी इस भौतिक संसार में क्या हो रहा है, देहात्म बुद्धि के स्तर पर नहीं रहकर वो आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। और ये उत्सुकता जो है ये एक शिष्य की योग्यता है। शिष्य का मतलब ये है कि उसमें लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कैसे इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्यों सड़ रहा हूँ, ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सुन लिया कि भगवान से विमुख थे, यहाँ आ गए, अब यहाँ पर हम अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मीठा फल खाएंगे, बुरा कर्म करेंगे कड़वा फल खाएंगे। तो ये हमने सुन लिया, लेकिन इसी बात को हमें बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से सुनने की आवश्यकता है ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाएं। फिर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमने एक ज्ञान को लिया, अब उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये जानकारी भी अलग अलग भक्तों से, हमें जो भी वरिष्ठ वैष्णवों से मिले हमें उनसे पूछना चाहिए, है ना? क्योंकि किसी वैष्णव के पास एक दृष्टिकोण है वो उस दृष्टिकोण से बताएगा, दूसरे वैष्णव के पास दूसरा दृष्टिकोण है वो दूसरे दृष्टिकोण से बताएगा। आप 5, 6, 10, 50 लोगों से पूछोगे तो किसी एक की बात जो है आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी, है ना? हर एक की बात नहीं समझ में आती है, नहीं, इसीलिए अधिक से अधिक वैष्णवों से हमें सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा भी बोलते हैं कि एक से ही सुनो कन्फ्यूजन हो जाएगी, नहीं तो क्या करें, एक से सुने अनेक से सुने क्या करना चाहिए? तो शुरू में एक से सुनना चाहिए, एक से सुनो शुरू में जब भक्ति में जुड़ें। और जब कुछ समय हो जाए आपका, थोड़ा सा आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, कुछ भक्ति के बारे में समझ आ गई, तो फिर हम और भक्तों से भी सुन सकते हैं। और अगर कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ संशय आ रहे हैं, कुछ बात एक वैष्णव की दूसरे वैष्णव की बात का आपस में विरोधाभास आ रहा है, तो वो जिसमें आपकी श्रद्धा है उससे आप जाके उसको क्लैरिफाई कर लो, उसको समझ लो, स्पष्टीकरण ले लो। भक्ति में ऐसा नहीं है कि यही बात सही है ये सही नहीं है, दो अलग अलग सिद्धांत पूरे विरोधाभासी हो सकते हैं लेकिन फिर भी दोनों सही हो सकते हैं। स्तर की बात होती है कि आप किस स्तर पे बात कर रहे हो, है ना? जैसे हम बोलें कि भगवान किसी से भी आसक्त नहीं होते, भगवान पूर्ण रूप से, और पराशर ऋषि भी कह रहे हैं, हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शन नाम भग इतिंगना, भगवान में वैराग्य पूर्णता है, भगवान में वैराग्य है। तो भगवान किसी से भी आसक्त नहीं होते, लेकिन हम देखते हैं भगवान आसक्त हो जाते हैं, नहीं, भगवान इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने वशीभूत हो जाते हैं कि सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं, दूत बन जाते हैं, तो क्या भगवान आसक्त है या नहीं है? तो भगवान आसक्त है और भगवान आसक्त नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? एक तत्व दृष्टि है और एक रस दृष्टि है। तत्व दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवान किसी से आसक्त नहीं होते, भगवान निरासक्त हैं, एक सेकंड में उठ के चल देते हैं। वृंदावन में पूरा वृंदावन, सारे ब्रजवासी, ब्रजवासी छोड़ो, मोर, पेड़, नदियाँ, घास, हाँ, गायें, बछड़े, हर चीज़ भगवान से पूरी आसक्त है और पूरी आश्रित है। फिर भी हम देखते हैं भगवान एक सेकंड में वो आए अक्रूर जी और रथ में बैठे और चल दिए, है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखा, नहीं। लेकिन भगवान आसक्ति भी दिखाते हैं। सो अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें, भगवान किसी से आसक्त नहीं है, लेकिन रस की दृष्टि से देखें तो भगवान अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। और भगवान कह भी रहे हैं, देखो भक्ति से आप मुझे खरीद सकते हो, आमारे किनिया लो बोलो गौर हरि। तो नित्यानंद प्रभु भी कह रहे थे, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। और नित्यानंद प्रभु कह रहे थे आमारे किनिया लो, किनिया लो मतलब खरीद लो, हाँ मुझे खरीद लो तो क्या कीमत देनी पड़ेगी, बोलो गौर हरि। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, मुझे खरीद लो, है ना। सो दो बिल्कुल विरोधाभासी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों बातें सही हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बात सही है एक गलत है। तो आपको ऐसा वैष्णव का संग करना पड़ेगा जो जिसमें ये क्षमता हो कि आपको अच्छे से समझा सके। इस तरह की बात ये एक दृष्टिकोण से भी समझा सके और दूसरे दृष्टिकोण से भी समझा सके, दोनों का सामंजस्य आपस में बिठा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सो हम इस प्रसंग पे बात करें तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो भगवान कैसे चला रहे हैं प्रकृति को, जो तीन गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसा कैसे संभव है कि भगवान इसको चला रहे हैं प्रभावित भी नहीं हो रहे? अगर भगवान चला रहे हैं तो चलाने का मतलब है कि भगवान ने कुछ तो किया होगा, नहीं, हाथ लगाया होगा, दृष्टिपात किया होगा, कुछ तो भगवान ने किया होगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने गुणों के साथ किसी ना किसी तरह से तो संपर्क में आए होंगे। तो जैसे दूध खटाई के साथ संपर्क में आया दही बन जाता है, तो क्या भगवान में ऐसा तो नहीं कि विकार आ गया हो? लेकिन हमने तो सुना है कि भगवान अविकारी हैं, भगवान में कोई विकार नहीं आता। तो मतलब कैसे हो रहा है ये, कितना अच्छा प्रश्न है विदुर जी का। और फिर विदुर जी ने और प्रश्न पूछा तो उन्होंने, विदुर जी ने कहा कि जो आत्मा है भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातना, भगवान खुद ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, भगवान ने कहा आत्मा मेरे अंश है, तो भगवान चेतन है। सो इसका मतलब आत्मा भी चेतन है, सच्चिदानंद है। तो फिर आत्मा जो है, जो जीव है, वो भ्रमित कैसे हो जाता है, माया में कैसे गिर गया वो, ये क्वेश्चन है कि नहीं है? मतलब एक सच्चिद आनंद वस्तु है, वो भ्रमित कैसे हो गई? और चलो भ्रमित हो गई, मुझे ये समझाओ कि भगवान सबके साथ है। भगवान ऐसा नहीं है कि किसी को एक बेकार से मंत्री को राजपाट सौंप दिया कि भाई तू चला, वो अपना अलग से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, भगवान खुद ही कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं सब जीवों के साथ हूँ। कठोपनिषद में भी लिखा है कि एक वृक्ष है, दो पक्षी हैं, साथ साथ बैठे हैं। और भगवान भगवद्गीता में भी कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, मैं सबका बहुत ही प्रिय मित्र हूँ। तो और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं, अंडांतरस्त परमाणु चांतरस्थम, कि मैं एक एक कण में हूं। और ऐसा नहीं है कि भगवान एक एक कण में है, गलत है ये वाक्य। भगवान एक एक कण में तो है, लेकिन एक एक कण के बीच में अगर थोड़ा सा जगह है, भगवान उसमें भी है। तो भगवान हरेक जीव के जब साथ ही हैं, तो फिर जीव दुख कैसे पा रहा है? नहीं, जब भगवान साथ है तो जीव दुख आखिर पाए क्यों रहे? उसको तो सुखी रहना चाहिए, स्वयं भगवान साथ में। तो विदुर जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि मुझे मेरा मन उद्वेलित कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, मैं सुख का अनुभव नहीं कर रहा। अशांत से कुतो सुखम, जब तक मन शांत नहीं होगा सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो मेरे मन को ये जो प्रश्न है ये बहुत ही उद्वेलित कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैत्रेय जी से क्यों ये प्रश्न पूछे? क्योंकि मैत्रेय जी भगवान के भक्त हैं। हमारे जो संशय हैं, डाउट्स हैं, उसको दूर करने की शक्ति सिर्फ दो लोगों में है, तीसरे में नहीं है। कौन से दो लोग हैं? एक भगवान और एक भगवान के भक्त। और तीसरे व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है कि वो इन संशयों को दूर कर सके। इसीलिए जैसे ही हमें कोई वैष्णव मिले, तुरंत हमें उनके सामने संशय रखने चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने प्रश्न रखे, उद्धव जी भगवान कृष्ण से मिले, संबंधी हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न रख रहे हैं। और वही प्रश्न रखे जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में रखे थे। और भगवान कृष्ण ने कहा देखो मैं बहुत खुश हूं तुमसे, तुम वही प्रश्न पूछ रहे हो जो अर्जुन ने मेरे से पूछे थे। हाँ, भागवतम के 11वें स्कंध में हमें इसका वर्णन मिलता है। तो उन्होंने कहा प्लीज आप मुझे बताएं, मेरी शंका का, मेरे संशय का निवारण करें। तो यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो चुनौतीपूर्ण मानसिकता से नहीं पूछना चाहिए, बहुत ही विनम्रता से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि अगर पत्थर पे पानी डालेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बह जाएगा। लेकिन अगर स्पंज है उस पे हम पानी डालेंगे तो उसको वो सोख लेगा, है ना? तो अगर विनम्रता है तो आपने जिज्ञासा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जिज्ञासा का लाभ तभी होगा जब हमारे में विनम्रता होगी। विनम्रता से उस ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति आती है, क्षमता आती है। अगर हम बिना विनम्र हुए अगर हम जिज्ञासा करते रहेंगे, पूछने के लिए पूछ लिया, ये दिखाने के लिए पूछ लिया देखो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, नहीं, हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसी जिज्ञासा से फायदा नहीं होगा। जिज्ञासा करनी है तो जिज्ञासा इस प्रकार करनी पड़ेगी कि हम वाकई में उसका उत्तर सुन के लाभान्वित होना चाहते हैं। हम चुनौती नहीं दे रहे, हमारी आप में पूरी श्रद्धा है हमें पता है कि आपके पास इसका उत्तर है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरी सहायता कर सकते हो, तो प्लीज़ आप मेरे संशय का निवारण करो। क्यों निवारण करो? क्योंकि जो संशय है वो एक बहुत बड़े बोझ की तरह है। जब तक निवारण नहीं होगा, जब तक वो बोझ हमारे कंधे से उतरेगा नहीं, हम चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। सो बहुत ही, जैसे विदुर जी ने बहुत ही विनम्र भाव से उनसे पूछ रहे हैं, अर्जुन ने बहुत ही विनम्र भाव से पूछा, शिष्यस्ते हम शादी माम तो प्रपन्नम, कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका शिष्य, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या और गलत क्या है ना। सो ये भावना, ये मानसिकता होना बहुत ही आवश्यक है ना। सो मैत्रेय जी ने इन प्रश्नों के उनको उत्तर दिए, और बहुत ही सुंदर प्रसंग जो है, बहुत ही सुंदर उदाहरण लेके आए प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला, देखो सूर्य का उदाहरण लिया, तो प्रभुपाद ने कहा, यहाँ पे मैत्री जी कह रहे हैं कि माया के कारण हो रहा है सब, तो बहुत अच्छी बात है माया के कारण हो रहा है, लेकिन क्या भगवान प्रभावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे, भगवान प्रभावित नहीं हो रहे, ऐसा कैसे संभव है? तो उदाहरण लिया सूर्य का, कि सूर्य की गर्मी से, सूर्य की तेज से जो है नदी समुद्र इत्यादि जलाशयों से पानी वाष्पित होता है ना, भाप बनता है पानी, और वो भाप जो है बादलों में बन जाती है, और वो बादल क्या करते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं। तो क्या बादल सूर्य को ढक लेते हैं? क्या बादलों में एक क्षमता है सूर्य को ढकने की? तो प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बादल सूर्य को नहीं ढकते, बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, हम सूर्य को देख नहीं पा रहे। सूर्य कहाँ है? सूर्य बहुत ऊपर है बादलों से, और कुछ संबंध नहीं है, छू नहीं रहा उसको, प्रभावित नहीं हो रहा बादलों से, लेकिन हम सूर्य को देख नहीं पा रहे। तो इस प्रकार जो माया है वो भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन जीव, जो क्षुद्र जीव है, अणु है, जो उसकी जो ज्ञान है उसको ढक लेती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि क्या माया भगवत ज्ञान को नष्ट कर देती है या ढकती है? तो माया भगवत ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। भगवत ज्ञान, जो भगवान से हमारा संबंध है, जो आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो माया जो है उसको नष्ट करने की क्षमता नहीं है, उसको ढकने की क्षमता है। माया उसको ढक देती है जिस प्रकार, और वो ढकने की कितने प्रकार हैं ढकने के, तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अभी 10 मिनट बात करना, अभी वो शुरू हो गया सुबह सुबह। सो क्या, हाँ, सो ढकने के भी 3 प्रकार हैं। हाँ, क्या 3 प्रकार हैं? भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है ना, एक हाथ हल्का सा हिलाया, फूंक मारी, हट जाता है, आग दिखनी शुरू हो जाती है, नहीं। और दूसरा ढकना क्या है, जैसे शीशे पे धूल आ जाती है ना, तो धूल को ऐसे हाथ से या फूंक मार के नहीं उड़ाना पड़ेगा, कपड़े से साफ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। और तीसरा ज्ञान ढकने का क्या उदाहरण है, जैसे गर्भ में जीव है, हाँ, पूरी तरह से ढका हुआ है, क्या उसका जो प्रदूषण है, जो पदार्थों से, जिस तरल पदार्थों से वो लिपटा हुआ है, क्या उसको हटाया जा सकता है? उसको नहीं हटाया जा सकता, नहीं। गर्भ में, जब वो गर्भ से बाहर निकलेगा तब उसको साफ कर सकते हैं, गर्भ के अंदर उसको कुछ नहीं कर सकते, असहाय अवस्था में पड़ा रहेगा, इसी प्रकार जो जीव है उसकी चेतना ये तीन प्रकार से, तो ये ऐसा नहीं है कि तीन ही तरह से ढकेगी, ये तीन मुख्य श्रेणियां हैं, इसके बीच में करोड़ों कॉम्बिनेशन है ना। आग धुएं, आग का धुएं से ढकना और शीशे का धूल से ढकना, इसके बीच में एक करोड़ कॉम्बिनेशन है, एक करोड़ विकल्प है, किसी कोई किसी स्थिति में है, कोई किसी स्थिति में है, कोई किसी स्थिति में, कोई एक बार सुनने से समझ लेता है, कोई 50 बार सुनने से भी नहीं समझता, सबकी अलग अलग स्थिति है। सो जो माया है वो ज्ञान को ढकती है, और चैतन्य चरितामृत में भी कहा है हाँ कि जो शुद्ध जो कृष्ण प्रेम है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कहीं गए और प्राप्त कर लिया, वो है, जैसे दूध में मक्खन है, ऐसा नहीं है कि आपने दूध में मक्खन डाला और फिर निकाला, ऐसा तो नहीं करते ना। दूध में मक्खन है, लकड़ी में अग्नि है, हम ऐसा नहीं है कि कुछ डाल के निकाल रहे हैं या कहीं से लेके आएंगे उसको, वो शुद्ध प्रेम है लेकिन सुप्तावस्था में है, ढका हुआ है। जरूरत कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो है ही, तो जरूरत कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की नहीं है, जरूरत है कृष्ण प्रेम को जागृत करने की, है ना। इसीलिए जो शब्द यूज होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जागरण करना, अवेकनिंग, उसको जगाना, जो ऑलरेडी है उसको जगाना। तो भगवान जो है वो माया को उत्पन्न तो करते हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जीव प्रभावित हो जाता है। तो मैत्री जी ने दूसरा उदाहरण दिया कि जीव कैसे प्रभावित हो जाता है। एक उदाहरण है कि भगवान प्रभावित नहीं हो रहे, अब दूसरा उदाहरण आ रहा है कि जीव कैसे प्रभावित हो रहा है। जीव तो सच्चिदानंद है, वो कैसे प्रभावित हो गया, तो उन्होंने उदाहरण दिया चंद्र की किरणों का, है ना, कि जैसे चंद्रमा की किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो चंद्रमा जो है वो आकाश में स्थित है, अविचल है, हिल नहीं रहा वो, लेकिन जब हम पानी में देखते हैं तो वो कांपता है, तो जो कांपने का गुण है वो चंद्रमा में नहीं है, वो कांपने का गुण किस में है, जल में है, लेकिन क्योंकि उसकी परछाई चंद्रमा की जल में पड़ रही है और हम जल में चंद्रमा को देख रहे हैं तो हमें चंद्रमा कांपता हुआ दिखता है। इसी प्रकार जीव जो है वो कभी प्रभावित नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, उसके द्वारा, ये जल की तरह है, उसके द्वारा जो सुख और दुख है वो आत्मा पर आरोपित हो जाते हैं, लगता है कि आत्मा प्रभावित हो रही है लेकिन वास्तव में आत्मा प्रभावित नहीं होती। तो ये उसी प्रकार है, उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया विदुर जी ने, तीसरा उदाहरण क्या दिया, उन्होंने बोला ये उसी प्रकार है जैसे कोई सपने में अपना सिर कटते हुए देखे। क्या कोई अपना सिर कटते हुए देख सकता है? कोई अपना सिर कटते हुए नहीं देख सकता, सिर ही कट गया तो देखेगा क्या, नहीं। लेकिन स्वप्न में हम देखते हैं हमारा सिर कट गया, खून निकल रहा है, सारा शरीर तड़प रहा है, अरे जब सिर कट गया नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये उसी टीचर की तरह है जो एक शरारती बच्चे को कहता है देख अगर तूने शरारत की तेरा सिर काट के वहां लटका दूंगा। इसमें उदाहरण दे रहे हैं पिछले श्लोकों में, नहीं आप सबने पढ़ा होगा। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब हम स्वप्न की भांति जब हम देखते हैं कि हाँ यार मेरा सिर कट रहा है, तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं, बेचैनी हो जाती है हमें, हालांकि सपना देख रहे हैं लेकिन फिर भी तकलीफ कष्ट का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो क्या हम वहां पर स्वप्न देखते हैं? हम वहां पर स्वप्न नहीं देखते, सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो जो स्वप्नावस्था है, जो जो सुषुप्तावस्था है, वो तुरीय अवस्था अवस्था कहलाती है, चतुर्थावस्था है। हाँ, एक चेतन है, एक अर्ध चेतन है, एक सपने ले रहे हैं, और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, अर्थात भगवान की तुरीय, अर्थात भगवान भगवान की शरण ले ली हमने। तो जब व्यक्ति सुषुप्तावस्था में होता है तो कोई स्वप्न नहीं देखता, कोई दुख और क्लेश का अनुभव नहीं करता। तो जब आत्मा ये समझ लेगी कि किस प्रकार से वो ये कष्ट पा रहा है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो सारे कष्ट रुक जाएंगे। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आत्मा जो है वो किस प्रकार से ये समझेगी कि बेकार में कष्ट पा रही है। तो भगवत ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, कैसे वो अपना सर कटते हुए देखने से बचे, कैसे वो ये समझे कि वो दुख नहीं पा रहा, वो दुख पा ही नहीं सकता, ये स्तर पर ब्रह्मभूता स्तर पर कैसे आ जाए जी। तो मैत्रेय जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो भक्ति मिश्रित ज्ञान है उससे जो व्यक्ति है वो इन दुखों से बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। भक्ति मिश्रित ज्ञान मतलब आप बोलो कि जो आप अभी सुन रहे हो ये सब ज्ञान ही तो ले रहे हो, है ना। ये बात अलग है कि ये शुष्क ज्ञान नहीं है। एक शुष्क ज्ञान होता है कि भौतिक प्रकृति कैसे चल रही है, पेड़ कैसे उग रहे हैं, फल कैसे आ रहा है, बारिश कैसे हो रही है, बाढ़ कैसे आती है, सूखा कैसे पड़ता है, ये शुष्क ज्ञान है। लेकिन एक ज्ञान है भगवत ज्ञान कि सो क्या हमें ज्ञान लेना चाहिए, हमें शुष्क ज्ञान से बचना चाहिए, लेकिन भगवत ज्ञान हमें लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो हमारे भक्ति को पुष्ट करता है। जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान कितने महान हैं, भगवान कैसे हमारे कल्याण के लिए भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ ही रहते हैं, हम चाहे मल का कीड़ा ही क्यों ना बन जाए, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब हम भगवान के बारे में ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारा भगवान में अनुराग बढ़ेगा, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। सो जब हम भक्ति मिश्रित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जो इस गर्त में गिरे हुए हैं, भौतिक गर्त में गिरे हुए हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से परेशान होकर हम नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं, तो जब हम भक्ति मिश्रित ज्ञान जब हमें मिलेगा तो हम इससे बाहर निकल आएंगे। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? ऑफ कोर्स भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें कुछ शक नहीं है कि भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान से। लेकिन ज्ञान अगर भक्ति को पुष्ट कर रहा है तो हमें वो ज्ञान लेना चाहिए, हमें भगवद गीता भागवतम इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, इससे हमारी भक्ति पुष्ट होगी, ठीक है। सो माया जो है, माया में हम प्रभावित हो गए तो माया से हम बाहर कैसे निकलेंगे? जिसकी माया है उसकी शरण लेकर, है ना। अगर हम किसी घर में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके गेट पर एक अल्सेशियन कुत्ता बंधा हुआ है, भौंके आ रहा है, आपको अंदर नहीं आने दे रहा, और आपको पता है अल्सेशियन कुत्ता है, पास गया तो काट भी लेगा, तो अंदर जाना है तो हमें अंदर जाने के लिए जिसका वो घर है, जो घर का मालिक है, अगर हम उसको फ़ोन करेंगे तो वो बाहर खड़ा हो, जरा आ जाओ, तो वो बंदा बाहर आएगा, घर का मालिक, और कुत्ते को बोलेगा हट, और कुत्ता आराम से साइड हो जाएगा, आप अंदर आ जाओ, बात खत्म हो गई, है ना। और यही बात भगवान भगवद गीता में भी बता रहे हैं, है ना, कि मम माया दुरत्या देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, ये माया मेरी है, बहुत कठिन है इसे पार पाना, तुम पार नहीं पा सकते। माँ मेरी प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, लेकिन अगर तुम मेरी शरण ले लोगे तो माया से आसानी से पार उतर जाओगे। कितनी आसानी से पार उतर जाओगे? जितनी आसानी से आप एक बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए पानी को पार कर सकते हो, मतलब कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो विदुर जी ने कहा, मेरा मन बहुत शांत हो गया आपकी बात सुन के, संचिन्न संशय मह्यम, मेरे जो संशय हैं आपने ज्ञान रूपी तलवार से काट दिए। सुउक्ता, सुउक्ता, उक्ता मतलब जो आपके वचन है, सु का मतलब बहुत ही सुंदर वचन है आपके, आपने इतनी अच्छे से ये सारा एक्सप्लेन किया है 5-6-7 श्लोकों में कि मेरा सारा अज्ञान जो है नष्ट हो गया, मेरा मन शांत हो गया, मैं अब भगवत ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, संप्रधावती, मैं उस पर अपना मन लगा सकता हूँ, उसको अपने मन में बसा सकता हूँ और उसमें अपना मन लगा सकता हूँ। तो क्या सारी बात समझ में आ गई? जो बोला था सब समझ में आ गया? तो विदुर जी आगे के श्लोकों में इसका वर्णन आएगा जब आप पढ़ेंगे, तो विदुर जी कह रहे हैं कि आपकी बात, आपके जो वचन है बहुत सुंदर है, लेकिन हो सकता है मैं सारी बात अच्छी तरह से नहीं समझ पाया हूं। तो कैसे समझोगे? तो उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं समझ लूंगा। कैसे? आपके चरणों की सेवा करके। तो हम ये भगवत ज्ञान सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरह से तभी समझ पाएंगे जब हम गुरु के चरणों की सेवा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम सोचें कि हम पढ़ते रहने से अपने आप समझ लेंगे, नहीं समझ पाओगे। सामने लिखा हुआ है, पढ़ लिया, फिर भी दिमाग में नहीं जाएगी बात। दिमाग में बात जाएगी जब हम गुरु की सेवा करेंगे, जब हम प्रभुपाद की सेवा करेंगे। तो हम सबको ये एक पैकेज है पूरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जप ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवद गीता भागवतम ही पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपनी साधना तो कर नहीं रहे, प्रचार में लगे हुए हैं। पूरा पैकेज है, सब करना पड़ेगा, जप भी करना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन भी करना पड़ेगा, और वरिष्ठ वैष्णव की, प्रभुपाद की, भगवान की सेवा भी करनी पड़ेगी। जब तक हम ये सारे काम नहीं करेंगे इकट्ठे, तो हम जो नॉलेज ले रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए विदुर जी ने कहा आगे के श्लोक में, इसका ये मैं आमतौर पे आगे के श्लोक हम चर्चा करते नहीं है, लेकिन बहुत ही सामयिक था इस बात को यहाँ पर लेके आना कि ये ज्ञान आपने सुन लिया पर्याप्त नहीं है, इसको समझने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। जब तक हम गुरु की, भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तक हम इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। और जो भगवान के उत्सव हैं विभिन्न प्रकार के, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, बलराम जयंती, और जो गुरु से संबंधित जो पर्व हैं, जैसे प्रभुपाद आविर्भाव दिवस, प्रभुपाद तिरोभाव दिवस, ऐसे, और गुरु की व्यास पूजा, जो आपके दीक्षा गुरु हैं, या अन्य, जरूरी नहीं है कि मैं तो सिर्फ अपने दीक्षा गुरु की व्यास पूजा में ही जाऊंगा, उसी में भाग लूंगा। सभी वैष्णव हैं, एक आपके पिता हैं तो एक चाचा ताऊ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा हो अपने पिता का आज्ञाकारी हो, चाचा की बात नहीं मान रहा हो, तो क्या पिता को खुशी होगी? पिता को खुशी नहीं होगी उसमें। पिता ज्यादा खुश होगा जब व्यक्ति, जब बच्चा उनकी बात तो मान ही रहे, साथ में चाचा ताऊ इत्यादि पूरे परिवार का अच्छे से सम्मान कर रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि मैं तो अपने गुरु की व्यास पूजा ही मनाऊंगा या सिर्फ प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाऊंगा, बस ये दो ही है मेरे जीवन में। नहीं, बिल्कुल गलत सोच है। जितने भी वैष्णव हैं जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा में 40-50 साल लगा दिए, हमें उन वैष्णवों का संग लेना चाहिए, उन वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए हमें, और उन उस सेवा से हमारे अपने जो हमारे दीक्षा गुरु हैं वो भी प्रसन्न होंगे और प्रभुपाद भी प्रसन्न होंगे और हमें सेवा में जुड़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। अगर हम सोचें कि हम तो सिर्फ अपने गुरु की सेवा करेंगे तो आपके अवसर कम हो गए। अगर आपके सामने 20 वैष्णव हैं और आप सोचो कि मैं इन सभी 20 वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूं, आपके सेवा के अवसर बढ़े कि घटे? अवसर बढ़ गए हमारे। तो जितनी हम, हमारे पास सेवा के ज्यादा अवसर होंगे, जितनी हम ज्यादा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में जुड़ेंगे, उतना विदुर जी कह रहे हैं कि जो बात मुझे अभी समझ में नहीं आई है आपके चरणों की सेवा करने से समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार जब हम अधिक से अधिक सेवा में जुड़ेंगे तो हमें जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं वो चीज़ें भी हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कि कोई भी भेदभाव नहीं करें कि ये गुरु की मैं सेवा करूंगा, इस गुरु की नहीं करेंगे। हमें सभी जो गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, हमें उनको पूरा सम्मान देना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप में से अगर कोई अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकता या वृद्ध हो गया नहीं पढ़ पा रहा, तो श्रवण करो, श्रवण करो, सुनो वैष्णवों से। जो वैष्णव है वो भी तो पढ़ के ही बता रहे हैं, तो श्रवण कर लो, है ना। और अगर अशक्त है, हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि करने की क्षमता नहीं है, तो ठीक है, भगवान भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 90 साल का भक्त है, उसने पिछले 5 साल नहीं भगवद गीता पढ़ी, नहीं पढ़ रहा, लगभग अंधा हो गया, नज़र इतनी कमज़ोर हो गई, कान खराब हो गए, सुनाई नहीं जा रहा, कान की मशीन लगा कर भी, तो भगवान बोले देखो तुमने पिछले 5 साल से भगवद गीता नहीं पढ़ी, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है, भगवान समझते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो कीजिए, सामर्थ्य नहीं है तो भगवान समझते हैं उस बात को, है ना। हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर क्षमता है नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है, क्षमता है तो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़े लिखे नहीं पढ़ पा रहे या अभी वृद्धावस्था के कारण नहीं कर पा रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अगर कर सकते हो तो करो, अगर कर सकते हो और नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम है, तो भगवान कहेंगे देखो आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। जैसे दान के ऊपर बात है, है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपने 1 रुपया दान दिया या 1 लाख रुपए दिए, पांडव मेंबर बन, पांडव का भी ज्यादा हो गया ना, 1 लाख, हाँ 1,51 हो गया, तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता 1 रुपये और 1,51,000 से। भगवान ये पूछेंगे भाई साहब आप जो है आप 10 रुपए दे सकते थे, आपने 1 रुपया क्यों दिया। या भगवान ये पूछेंगे भैया तुम 10 लाख दे सकते थे, तुमने 1,51 दे के बाकी अपने पास क्यों रख लिया, तुम्हें नहीं पता किसका पैसा है, तुम्हें नहीं पता क्या किसका पैसा है। नहीं तो हम में जो क्षमता है वो क्षमता अनुसार हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, ये सिद्धांत है। ठीक है। और किसी का प्रश्न? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमने बात की कि भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा भक्ति कैसे करेंगे? तो फिर कैसे भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ हो सकती है? नहीं तो ये कैसे समझे इसको? भक्ति ज्ञान से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति ज्ञान पर आश्रित नहीं है। भक्ति, सिर्फ भक्ति करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस मायने में भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। लेकिन जो भगवत ज्ञान है, जो भगवान के बारे में जानकारी है, वो भी भक्ति का ही अंग है और भक्ति को, जैसे हमने बात की, भक्ति को पुष्ट करता है, पूरक बन जाता है ना, वो पूरक बन जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम ज्ञान लेते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, हम अच्छे से भक्ति करते हैं। जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, वो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक छोटा सा बच्चा, वो कैसे भगवान का नाम लेना शुरू करेगा? उसे तो पता ही नहीं क्या है। एक जो छोटा सा बालक है वो कैसे भगवान का नाम ले सकता है? हम देखते हैं, जो अब इस्कॉन में तो अब कई पीढ़ियाँ आ गई, तो हम देखते हैं लोग गोदी में बच्चा उठाया होता है, और कोई वैष्णव से मिले तो बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा, तो बोलते हैं हरे कृष्णा। तो भक्ति है, वो कैसे कर रहे हैं? वो भक्ति ज्ञान पर आश्रित नहीं है, भक्ति किसी पर भी आश्रित नहीं है, भक्ति सिर्फ एक ही चीज पर आश्रित है। किस पर? भक्ति पर। भक्ति सिर्फ भक्ति पर आश्रित है और किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ज्ञान अगर हम लेंगे और ज्ञान पूर्वक हम पूरे जानकारी के साथ भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। और किसी का प्रश्न? तो प्रश्न है कि अगर ये पूरा पैकेज है तो हम कितनी साधना करें, कितने सेवा करें, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा वरिष्ठ वैष्णव की सलाह मशवरे से, गुरु के द्वारा। गुरु और वरिष्ठ वैष्णव, जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु का मतलब गुरु और जो वरिष्ठ वैष्णव है वो डिसाइड करेंगे। गुरु आपको ये कह सकता है कि 64 माला भी कम है तुम्हारे लिए, क्या करते हो सारा दिन, 100 माला करो, गुरु ये कह सकते हैं। या गुरु ये भी कह सकते हैं ठीक है 16 माला कर ली, बाकी और काम में लगो, है ना। सो एक बार इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार हम बड़े मंदिर में थे, इष्ट कैलाश में, तो वहाँ पे जो टेंपल कमांडर थे उस समय, अब मुझे पता नहीं अब क्या उनकी पोजीशन, क्या पोस्ट है उनकी। सो जन्माष्टमी का दिन था, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज देख रहे थे क्या व्यवस्था चल रही है, तो उन्हें कुछ कमियां दिखाई दी, उन्होंने बोला बुलाओ उसको। तो उसको बुलाया, तो महाराज ने बोला ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों खराब है, वहाँ वो क्यों नहीं चल रही चीज़, वहाँ पर ये होना चाहिए था। तो ना महाराज क्या क्या करूं, मैं सोया नहीं हूं 2 दिन से। तो महाराज कहते मैं क्या करूं इसमें, नहीं सोए तो क्या हो गया, करो इस काम। तो उस व्यक्ति के लिए, उस भक्त के लिए, उस पर विशेष महाराज की कृपा है। महाराज कह रहे हैं तुम 2 रात से नहीं सोए तो क्या हो गया, करो। लेकिन दूसरे भक्त को महाराज बोल सकते हैं देखो 6 घंटे की नींद लेना ताकि जप अच्छे से कर पाओ, है ना। तो हमें कितनी साधना करनी चाहिए, कितनी सेवा करनी चाहिए, वो हमें गुरु से और वरिष्ठ वैष्णवों से हमें वो जानकारी प्राप्त होगी। हमें वो आपकी स्थिति को देखकर आपके समर्पण को देखकर, आपकी क्षमता को देखकर, एक जो रूल है सब पे बराबर से लागू नहीं होता। हर एक व्यक्ति की स्थिति अलग अलग है, किस पे क्या कितना लागू होगा वो गुरु और वरिष्ठ वैष्णव ही बताएंगे। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि दवाइयां तो हैं लेकिन कौन सी दवाई कितनी मात्रा में खानी है वो डॉक्टर बताएगा, है ना। तो गुरु है वो डॉक्टर, गुरु आपको वो डायरेक्शन मार्गदर्शन देगा कि आपको कितनी मात्रा में क्या क्या करना है, आपके लिए क्या फायदेमंद है। सो क्वेश्चन है कि हमें दूसरे जो गुरु हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए, हमने बात की थी, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो क्या हमें ढूंढना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है तो हम जाएं, या हमें पता चल गया तो हम चले जाएं? यही प्रश्न है ना आपका। तो अगर आप वैष्णव के समाज में रहेंगे, आप अगर आप वैष्णव के साथ हैं, आप मंदिर में आ रहे हैं, आपको अपने आप जानकारियाँ मिलती चली जाएंगी आपको, है ना। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे आप मंदिर में आ रहे हैं तो अब एक जो मंदिर है उसमें बहुत सारे गुरु के शिष्य होते हैं, कोई गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य है, कोई जयप्रताका महाराज का शिष्य है, कोई राधा गोविंद महाराज का शिष्य है, कोई और गुरुओं के शिष्य हैं। तो जैसे आपके संबंध होंगे वैष्णवों के साथ में, जैसे आपके आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी, तो आपको अपने आप जानकारी मिलती शुरू हो जाएगी। और जैसे आपकी रुचि होगी, आपकी रुचि के अनुसार अपने आप इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अगर किसी को पता है कि आपकी रुचि है दूसरे गुरुओं के व्यास पीठ में भी जाने के लिए, तो लोग सामने से आपके आके आपको बताएंगे। अगर आपकी रुचि नहीं है तो पता चल जाएगा, भाई रुचि नहीं है, तो एक वैष्णव आपके सामने आएगा, आपसे 1000 बातें करेगा, आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया आपकी रुचि नहीं है। लेकिन अगर आपकी रुचि है, आपको फ़ोन करेगा, ईमेल डालेगा, एसएमएस करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, आपको आपको ढूंढेगा, आपके घर जाके बताएगा आपको। तो अगर आपकी रुचि होगी, आप देखेंगे जिस चीज़ में आपकी रुचि है, आपके पास अपने आप वो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ता, आपको प्रयास सिर्फ करना है अपनी रुचि बनाने में। रुचि होगी, धीरे धीरे अपने आप वैसे लिंक बन जाते हैं, अपने आप आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, क्या ज्ञान आवश्यक नहीं है क्योंकि ज्ञान से भक्ति सुदृढ़ हो रही है? हम ये कह ही नहीं रहे कि ज्ञान आवश्यक नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं, ज्ञान और भक्ति, दोनों जरूरी हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान और भक्ति में ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, तो भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ है का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की वैल्यू नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमें चुनना पड़े, सारा संसार खत्म हो गया, दो ही वस्तुएं सामने पड़ी हैं, ए और बी, तो ए और बी में से क्या चुनना चाहोगे? एक ही चुन सकते हो, तो हम एक वस्तु का चुनाव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरी वस्तु है वो बेकार है, घटिया है, उसको फेंक दो, नहीं। हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या श्रेष्ठ है। तो ज्ञान और भक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान का अपना स्थान है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय।